उत्तराधिकारी तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य चित्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जिहाव पुत्रे की तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोष्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञैराधे तं नयमां चरणं। निरबद्ध संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधा जुषा पिव मां भजन जुर्जर गृह श्रृंखला संवृश्य तदवह प्रतिजात साधु। हम लोग गोपियों का कृष्ण के प्रति पीछे प्रति प्यार में क्या होता है क्या भाव है इसका वर्णन अभी तक हम लोग गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव इसका वर्णन कर रहे थे। सनातन गोस्वामी जी इसका वर्णन कर रहे थे। गोपियां कृष्ण के मिलन में और कृष्ण के विरह में कैसे आनंदित और दुखी होती हैं, उनके क्या भाव होते हैं और विरह में भी कैसे मिलन जैसा ही उनका भाव होता है। जो विश्व में कहीं भी किसी भी साहित्य में नहीं दिखता है। अब यहां पर कृष्ण का गोपियों के प्रति क्या भाव है अब इसका वर्णन कर रहे हैं। इसी के लिए वो कृष्ण अपने मुख से इसका वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं प्यारी गोपियों तुम्हारा हमारे साथ में जो प्रेममय संबंध है और संयोग है क्या लिख रहा सब हृदय में देखेगा नहीं इस समय है। वो वीरवध्य है संपूर्ण रूप से निर्मल है। गोपियों का इसके पहले बतलाया गोपियों का देह और दैहिक सब कुछ कृष्ण के प्रीति के लिए सब कुछ है। अपने लिए वो कुछ भी नहीं करती अपना श्रृंगार, अपना खाना, भोजन, दूसरे लोगों से प्रीति, उनकी किससे अधिक प्रीति होती है? जो कृष्ण के प्रिय है उन्हीं से उनकी प्रीति होती है। हम कभी कभी अपने गुरु और अपने इष्ट देव का ध्यान उतना नहीं रखते। हमको उसी से प्रीति करना चाहिए जो हमारे गुरु के अत्यंत प्रियतम है, हमारे कृष्ण के अत्यंत प्रियतम है। हमारा जो कुछ भाव है किसी से प्रीति का तारतम्य, और सब इसी पर रहेगा जो हमारे गुरु जी की जो जितनी अधिक सेवा करते हैं और गुरु जी के जितनी अधिक प्रिय हैं वो हमारे अधिक प्रिय होंगे। गुरु जी से जो विमुख हैं या जितने दूर हैं उसे हमारा दूर का संबंध रहेगा। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अधिक प्रेम रखते हैं, कृष्ण के लिए सर्वस्व देते हैं, उनके प्रति भी उनकी ऐसी भावना होती है। ललिता जी राधा जी को शिक्षा दे रही हैं, देखो तुमको एक बात बतलाती हूं, कृष्ण जिसको प्रीति करते हैं उसको तुम प्रीति करना यदि कृष्ण का प्यार चाहती हो तो, और कृष्ण से जिसका संबंध नहीं उसे बहुत दूर, लाखों दूर रहना। यदि तुम्हारा कोई अप्रिय व्यक्ति भी है किंतु कृष्ण का प्रिय है तो बस उससे प्रेम मत व्यवहार रखो, अपना सब छोड़ दो, अपना विचार। इसी तरह से हम लोग भी देखेंगे जो गुरु का जो अत्यंत अधिक प्रिय है वही हमारा अधिक प्रिय रहेगा। गुरु को अधिक कौन प्रिय होगा? जो भगवान का सेवा, भजन, साधन जो जितने ही उन्नत रूप में करते हैं उतना ही अधिक प्रिय है। कृष्ण की सेवा जो संपूर्ण रूप से जो करता है कृष्ण उसको अधिक प्यार करते हैं। इसलिए राधिका जी का ये विचार है या गोपियों का विचार ये है, यदि हमें छोड़ करके कृष्ण जिसको वो प्यार करते हैं हम उसकी दासी होएंगे, और दासी होकर के उसको प्रसन्न करके कृष्ण से उसका मिलन कराएंगे, ये साधारण लोगों के लिए संभव पर नहीं है। तो चंद्रावी इत्यादि तो कृष्ण की बड़ी प्यारी सखियां हैं, तो उनसे ऐसा क्यों, तो उनकी दासी हो क्यों नहीं जाती? तो इसको समझना चाहिए ये चंद्रावली, पद्मावती और शब्दा इत्यादि अलग नहीं है कुछ, वो राधा जी बनी हुई हैं प्रेम के विकास के लिए, कृष्ण को प्रेम रस आस्वादन करने के लिए वही बनी हुई हैं इस रूप में। और कभी कभी ऐसी ही भावना रखती हैं, यदि हिरण के प्रति ऐसी भावना रख सकती हैं, हिरणी के प्रति, गायों के प्रति ऐसी भावना रख सकती हैं, तो इनके प्रति वैपरीत्य बुद्धि कैसे रहेगी? नहीं। इसलिए उनका उनके प्रति वैवर्णश्य नहीं है बल्कि प्रेम की एक प्रतिद्वंदिता है जिसके बिना यह प्रेम संजीवित नहीं रह सकता। इसको साधारण लोग वहां पर साधारण में साधक की स्थिति में, रुचि की स्थिति में ही ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाता है। आसक्ति में कहीं भी किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं रह सकता, द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, निष्ठा नहीं वो कम नहीं लगता है यदि रहेगा भी तो। और आसक्ति में तो एकदम शत्रुता का भाव ही नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, किसी के साथ में अनबन हो सकती है किंतु हम उसका बुरा करेंगे ये कभी उसके मन में नहीं रह सकता है, नहीं तो शुद्ध सत्व उसके हृदय में नहीं आएगा। तो जिसको मां प्रेम कहा, अनुराग और महाभाव तक जिसको है, वहां पर प्रेम और ईर्ष्या द्वेष नहीं है, केवल प्रेम का वैचित्र्य है। ये हम लोग उसको नहीं समझ सकते, साधारण लोगों के लिए समझना संभव पर नहीं है। जब नारद जी की ही बात हम नहीं कि किस प्रकार से उन्होंने जमलार्जुन को अभिशाप दिया, वो क्रोधित होकर के नहीं, उसको भगवान से कृष्ण का मिलन कराने के लिए उन्होंने ऐसा अभिशंपात किया, यह हम उनकी ही बातें नहीं समझ सकेंगे। इसलिए इन चीजों को समझने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। इसे गोपियों का सब कुछ कृष्ण के लिए है। कृष्ण का कैसा है, यदि गोपियां अपने प्राण कोटि रूप से कृष्ण के चरण रख के चंद्रिका की निछावर करती हैं, अपने प्राणों को कोटि कोटि प्राणों को कृष्ण के नख चंद्रिका की आभा पर ही निछावर कर देती हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण भी अपना सर्वस्व राधिका के चरणों में निछावर कर देते हैं। इसलिए यहां पर यह बतला रहे हैं, ये कृष्ण की बल्कि कृष्ण की ये क्या हीनता नहीं जो कृष्ण उनसे हीन बन गए, छोटे बन गए, बल्कि कृष्ण का ये बड़प्पन है। तो वही कह रहे हैं यहां, पहले गोपियों ने प्रश्न किया कृष्ण के अंतर्ध्यान होने पर, और अंतर्ध्यान होने के बाद में गोपियों ने बड़े विरह से गोपी गीत का ये गायन किया, रोते रोते रोते। तब कृष्ण हठात उपस्थित हुए उनकी शोभा में, और उनके अंगराग कुमकुम से सने हुए रंगे हुए दुपट्टों पर ओढ़नी पर उन्होंने आसन बनाया, और कृष्ण उस पर आधे मुस्कुराते हुए आधे लज्जित होते हुए उस पर बैठे। उस समय उनका रूप कैसा हुआ, मनमथ रूप, ऐसे बढ़कर के और कोई सुंदर रूप उनका नहीं होगा। और उस समय में गोपियों ने उनसे पूछा, प्रेम की कुछ परिभाषाएं होती हैं, तो जो प्रेम करता है उसे साधारणतर से प्रेम किया जाता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रेम नहीं करने पर भी उनसे प्रीति रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं प्रेम करें या ना करें कोई वो किसी पर भी प्रेम नहीं करते, तो आप तीनों में से कौन से हैं, आपका व्यवहार कैसा है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इन तीनों में से कोई नहीं, प्रेम के बदले जो प्रेम करना चाहता है जैसे हमसे भी वो प्रेम करे, मैं प्रेम करता हूं उसके वो भी करें, तो ये बनियागिरी है, ये प्रेम नहीं है। हम अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें, हम अच्छा व्यवहार करें, किसी से अपेक्षा मत रखो जो यही हमारे के साथ में अच्छा ही व्यवहार करें, नहीं तो दुखी हो गए, ये बनियागिरी है। इसलिए जो हमसे प्रेम करता है उसे बनियागिरी का मैं भाव नहीं रखता, जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करता है वो है गुरुजन, माता पिता और गुरुजन, माता पिता भी गुरुजन के अंतर्गत है। कोई पुत्र या शिष्य प्रीति रखे न रखे किंतु पिता और गुरु उसे स्नेह करता है और उसका कल्याण चाहता है, भले ही वो उसका विपरीत काम करे किंतु कभी भी उसका अमंगल नहीं चाहेगा, उसके प्रतिदान की अपेक्षा नहीं, यद्यपि की रखते हैं लोग किंतु शुद्ध पिता कभी भी आकांक्षा नहीं रखता, माता मैया नहीं रखती, तभी उसका कल्याण, यहां तक कि घर से निकालकर उसने पीठ पर पीटने पर भी ये नहीं कहेगी मैया और बाप ये तुम्हारा संहार हो जाए, तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, ये नहीं कहेगी। बेटा गोली से मार सकता है किंतु शुद्ध माता पिता ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इनका प्रेम धर्म युक्त है, इसमें उनकी सज्जनता भी है, सौहार्द है, सौहार्द में उनका प्रीति उनके प्रति, और इसमें शुद्ध है, इसमें तुम लोग आ सकती हो किंतु ये कहा नहीं, किंतु हम इसमें भी नहीं है। और तीसरी बात, कोई प्रेम ना करे और करे, ये चार प्रकार के आत्मकाम, आत्माराम, कृतघ्न और गुरुद्रोही, चार। आत्माराम, मैं आत्माराम नहीं, आत्माराम नहीं तो तुमको बुलाया कैसे, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, ये तो मैं आत्माराम कैसे हुआ, तुमको बंसी से बुलाया, बीच में मिलता हूं, अभी देखो मैं अभी तुमसे मिला, इसलिए आत्माराम भी नहीं, आत्मकाम भी नहीं, हमारी कामनाएं भी पूर्ण नहीं हुई। और गुरुद्रोही मैं नहीं, यदि होता तो तुम लोगों ने बुलाया, मैं कैसे आया, गुरुद्रोही भी नहीं। और कह रहा है अकृतज्ञ, मैं कृतज्ञ नहीं, अकृतज्ञ नहीं हूं, की हुई भलाई को मैं मानने वाला हूं, इस तरह से भी नहीं। इस प्रकार से उनको निरुत्तर कर दिया। इसके बाद में कहते हैं प्यारी गोपियों, मैं और सब हैं, मेरी और तुम्हारी प्रीति परम पवित्र है, मैं तुम्हारी इस प्रीति को बढ़ाने के लिए ही वहां से अंतर ध्यान हुआ था, और जगत में तुम्हारी इस प्रीति की घोषणा है, जो तुम्हारे समान और विश्व में किसी का प्रेम नहीं है, इसको घोषणा करने के बतलाने के लिए, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति कोई बहुमूल्य चीज पाले और पा करके उसको अच्छी तरह से नहीं रखा, वो चीज खो गई, खो जाने पर उसको पता चला कि ये तो बहुमूल्य हीरा था, तो जैसे उसके लिए छटपटाता है, उसी तरह से मैं बीच से अंतर ध्यान हो गया था, किंतु था कहां, तुम्हारे पास ही मैं था, तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था, तुम्हारे इसको सुनने के लिए तुम हमको कैसे गाली देती है या क्या करती है उसको सुनने के लिए, और तुम्हारी प्रीति को बढ़ाने के लिए किया था, इसलिए हमारे ऊपर में ईर्ष्या मत रखना, द्वेष मत रखना, कोई दोष मत देखना। और उसके बाद में तब ये कह रहे हैं, न पारे हम निर्वध्य संयोजन, गोपियों हमारा और तुम्हारा मिलन निर्वध्य है, निर्वध्य माने शास्त्र, लोक, परलोक, किसी भी दृष्टि से कहीं भी इसमें गंदा का कोई भी भावना या भोग की लिप्सा या कहीं भी बुरी बातें इसमें नहीं है। स्मार्ट किसको कहते हैं, जो स्थूल दृष्टि से किसी पर दोष आरोप करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मान ले कि ये किसी के प्रति मायाबद्ध होने के बाद में एक स्त्री के प्रति आकर्षित हुआ, आत्मा का उसे क्या संबंध है कुछ, आत्मा तो उसकी पवित्र है, आत्मा से कोई संबंध नहीं, ये विचार सुखदेव गोस्वामी नारद जी जैसे महात्मा कर सकते हैं, किंतु इसके नीचे वाले इतना विचार नहीं करेंगे, लौकिक विचार भी उनमें आएगा, लौकिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति, कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे से पति से मिलती है तो यह बहुत ही गर्हित काम और दुराचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मृति में हमारे शंख लिखित मनु जी ने और पराशर इत्यादि ने और सब लोगों ने इसको गर्हित माना है, बुरा माना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी स्त्री अपने पति को छोड़कर के दूसरे से यदि संबंध रखती है तो लोक परलोक दोनों ही उसके नष्ट हो जाते हैं, इसलिए स्मृति शास्त्र में इसे गर्हित माना गया, लोक समाज में भी इसे बुरा माना गया और वो दंडनीय भी है, लोग उसे, समाज के लोग उसे घृणा करते हैं, जाति पाति से निकाल देंगे, उसका छुआ हुआ पानी नहीं पीते। किंतु यदि कोई ऐसा करे अपने पति को छोड़ करके भी, यदि कृष्ण से प्रेम करे तब तब क्या होगा? तो ये खराब होगा कि नहीं? ये खराब नहीं। क्यों? कृष्ण ही यथार्थ में आत्मा के भी आत्मा के आत्मा प्राण पति और सर्वस्व है। इसलिए मंदोदरी, तारा, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, ये सब पांच कन्याएं हैं, वैवाहिक नहीं माना गया। और इनका पात्र स्मरण जो करेगा वो पतिव्रता हो सकती है, पतिव्रताओं का भी इनका स्मरण करना चाहिए, किंतु पांचों हैं विग्रही लोकदेशी से। रावण को छोड़ करके मंदोदरी विभीषण से शादी किया, उसके साथ में रही। तारा भी अपने पति बाली को मरने के बाद में सुग्रीव के साथ में रही। द्रौपदी के पांच पति हैं, कुंती के भी छह पति हैं, पांच पति हैं। उस तरह से अहिल्या के भी अपने पति को छोड़ करके इंद्र के साथ में उसका मिलन हुआ। तो इस तरह से इनका कोई भी पतित्व नहीं है, ये पतिव्रता नहीं है, किंतु कृष्ण को ही या राम को अपना सर्वस्व प्रियतम समझा, इसलिए ये पांचों कन्याओं के कन्याएं हैं। पतिव्रता को भी चिरस्मरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, क्योंकि कृष्ण को ही परम पति समझा। गोपियों ने क्या किया? अपने पतियों को छोड़ करके लौकिक दृष्टि से और कृष्ण के को अपना प्रियतम माना। अच्छा, उनका लौकिक पति भी कौन था? कृष्ण ही थे, किंतु ये लोगों के समझ में नहीं आएगा जे कैसे। उनकी शादी भी यदि हुई थी तो कृष्ण से ही शादी हुई थी, जब ब्रह्मा जी के राधिका जी की शादी कृष्ण की से हुई थी, भंडीर वन में हुई थी। उनके जो दूसरे पतियों का स्वरूप है वो क्या है? वो भी कृष्ण का की छाया है, वो अलग से कुछ अभिमन्यु तभिमन्यु नहीं है। इसलिए इनके लौकिक दृष्टि से भी पारलौकिक दृष्टि से भी कृष्ण से इनका मिलन परम पवित्र है। किस लिए कह रहे हैं? इस तथ्य को कृष्ण जानते हैं, या उनके जो परम भक्त हैं, जो उच्च कोटि के हैं, प्रेम के अढ़ाई अक्षर के पंडित हैं, वो लोग समझेंगे। साधारण लोगों के लिए समझना कठिन है, वो नहीं समझ पाते हैं कि सत्यभामा रुक्मिणी से ये क्यों गोपियां श्रेष्ठ है, उनके समझ में नहीं आता। बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों, श्री संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य लोग नहीं समझ सके, तर्क वितर्क किया था, अंत में बलदेव विद्याभूषण ने उनको परास्त किया। इसलिए यहां पर कृष्ण स्वयं अपने मुख से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, जो तुम्हारा जो प्रेममय मिलन है वो लौकिक रीति से, परमार्थ की दृष्टि से, परलोक की दृष्टि से और लौकिक दृष्टि सब दृष्टियों से ये परम पवित्र है। हमारे लिए तुम लोगों ने दुष्कर गृह श्रृंखलाएं, जिसको छेदन करना बड़ा भारी कठिन है। गृह की श्रृंखलाएं मैंने पति हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, पिता हैं, माता हैं, हमारे घर के पशु हैं, रसोई का कार्य है और यह सब जितने गृह देह दैहिक चीजें हैं, उन गृह की श्रृंखलाओं को लोहे की श्रृंखला से भी मजबूत है, इनको काट करके आना, भगवान का भजन करना, वो भी संपूर्ण रूप से, ये बड़ा ही कठिन है। हम लोग आज करेंगे, समझते हैं कि हम अभी नहीं भजन करने योग्य, हम गृह की श्रृंखलाओं को काट करके भी अभी नहीं काट पा रहे। अच्छा, अभी धीरे 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 करेंगे न? कैसे धीरे धीरे करेंगे? अच्छा, थोड़ा सा और कम करेंगे, फिर कम करेंगे, कम करेंगे, आज इसी में हो जाएगी तो हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए, होगी भी नहीं, बराबर ही कठिन है। आपने विवाह किया या विवाह करके भी उसे छोड़ दिया, ये बड़ी भारी बात नहीं है। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा सोचता है अनाशक्त रहेंगे, अनाशक्त रह करके उसको कार्यतः प्रत्याग कर दें ऊपर और नीचे से, ये बड़ा भारी कठिन है। इसलिए गीता के इस श्लोक का अर्थ वो लगाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। आसक्ति काट दो और किन संसार में बने रहो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी कहते नहीं, स्वरूपता और कार्यता दोनों को एकदम काटो। किस लिए? जब अंदर से आसक्ति कट गई तो फिर इसकी क्या जरूरत है? कृष्ण के लिए सब कुछ क्यों नहीं करते? यही कारण है, पाते बड़ा भारी कठिन है। गोपियां इससे बहुत ऊपर की चीजों को भी, जितना संसार में जहां जो कुछ था स्नेह था सब काटा। ऐसा कर सकोगे तो संपूर्ण रूप से कृष्ण के प्रिय पात्र हो सकोगे और भजन कर सकोगे, समझोगे। किंतु इतना कहा, अभी तो आसक्ति ही काटो। ये भी यही नहीं कट रही, पैसे का मोह नहीं कट सकता है, पैसे का मोह ही नहीं कटता। अभी प्रतिष्ठा की भावना नहीं कटती है, इसलिए गृह श्रृंखलाओं को तुमने काटा। गोपियों को अब लज्जा काटना बड़ा बड़ी मुश्किल है, लज्जा भी को काट दिया, सब कुछ छूटेगा, लज्जा नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा की लालसा ये भी काट दिया। लोक धर्म की भी जलांजलि उन्होंने दे दी। हमारे परिजन हमको कहते हैं कि ये व्यभिचारिणी हो गए, ठीक है कहते रहे आप। ननद गो जा तुई बोल दे तुई नगरे, राई कलंक की डूबे छे कृष्ण कलंक सागर। श्याम के कलंक के सागर में ये डूब गई, भले ही कहते रहे सब लोग, कोई परवाह नहीं, कहे सब। लज्जा को भी छोड़ दिया, ऐसा छोड़ना बड़ा भारी, द्रौपदी के लिए भी संभव नहीं हुआ, वहां के सत्यभामा रुक्मिणी के लिए भी संभव नहीं है, सीता जी के लिए भी नहीं है, बहुत कठिन है। तुम लोगों ने सब कुछ को छोड़ करके संपूर्ण रूप से हमें भजन किया। हम लोग मापे अपने को, वी शुड ट्राई टू सी दैट हाउ वी आर डूइंग, हाउ मच वी हैव गिवन अप ऑल दीज थिंग्स फॉर कृष्ण। वी हैव गिवन समथिंग बट नॉट फुल्ली, समथिंग सो मच थिंग्स। सो मेरे पास में अप्रतिदान की कोई भी बात नहीं है। मैं तुम्हारे इस ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। उऋण होने की बात क्या, बिंदु मात्र भी उसका परिशोध मैं नहीं कर सकता। आई कैनॉट रिपे यू, अ लिटिल फ्रैक्शन इवन आई कैनॉट रिपे। सो आई एम डेटेड टू यू, मैं तुम्हारा चिरणी हूं। देवताओं जैसी लंबी आयु पाने पर भी तुम्हें यदि ऋण शोधन करने का मैं प्रयत्न करूं तो लाखों लाखों जन्मों में, देवताओं की आयु होती है लंबी, एक मन्वंतर काल तक, उसमें भी अपने ऋण से, तुम्हारे ऋण से मैं अपने को शोधन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट रिपे यू इन द होल लाइफ ऑफ इंद्र फॉर वन मन्वंतर, आई कैन नॉट रिपे यू। तब तुम अपने आप अपने साधु कुत्ते से ही हमारे प्रति प्रसन्न हो, साधु माने उदारता से, तुम्हारी उदारता ही तुम्हारा ऋण उतार सकता है, और कुछ हमारा ऋण, इसलिए मैं सदा के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया। सनातन गोस्वामी जी टीका का तात्पर्य बतला रहे हैं। सनातन गोस्वामी नाई गिविंग एक्सप्लेनेशन टू दिस श्लोक। अब तक हमने श्लोकों में गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव बतलाया, गोपियों के कृष्ण के प्रति कैसा भाव है, कृष्ण के लिए ही जीती और मरती हैं। श्रीमद्भागवत में जो कहा है आगे ये सब इसको बतलाएंगे, कहां कहां पर कैसे गोपियों के लिए उन्होंने कहा है। तो गोपियों का यहां पर कृष्ण के प्रति, गोपियों का के प्रति कृष्ण के भाव कैसे हैं उसको ये बतला रहे हैं। किसी भी साहित्य में श्रीमद् भागवत को छोड़कर कहीं कहीं नहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ ग्रंथ है। और शास्त्र में उन्होंने कहा कि मैं भक्तों का हृदय हूं और भक्त हमारे हृदय हैं, ये भी बतलाया है। उद्धव को अपना बहुत श्रेष्ठ भक्त बतलाया है, किंतु इस तरह से कहीं नहीं बतलाया है। स्वयं स्वयं भगवान कौन कह रहे हैं? राम नहीं कह रहे, नृसिंह बामन इत्यादि नहीं, कौन कह रहा है? द्वारकाधीश नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं? नंदनंदन भी नहीं,
राधाकांत
रास बिहारी से एकदम राधाकांत ही एक स्वयं गोपी जन वल्लभ ये कह रहे हैं अपने मुख से। सर्वोत्कृष्ट भगवत्ता की एकदम अंतिम सीमा वो कृष्ण यहां पर कह रहे हैं, अपने पूर्ण भाव में है, पूर्णतम भाव में इस समय कृष्ण कह रहे हैं। इस श्लोक में यहां से आरंभ करके 9 श्लोकों में कृष्ण अपने भावों को व्यक्त करेंगे, श्रीमद् भागवत से ले आएंगे। इसमें रास क्रीड़ा के में हमने बतलाया प्रसंग, अंतर्ध्यान होने पर ब्रजदेवियों के महाआर्तनाद को सुन करके उनके सामने में फिर प्रकट हो गए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रमण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृहन्ति ते भूरिदा जना। और भी सब श्लोक अंत में उन्होंने गाया क्या है, यत्ते सुजात चरणम वरुहम स्तनेशु भीता स्वनै यदीमहि कर्कशेषु तेनाटवीम अटसि तदव्यथ तेन किंचित कृपादिभिर्भ्रमत धीर। कृष्ण संभाल नहीं सके, अपने आप उनके सामने प्रकट हो गए और कुमकुम उनके कुछ कुमकुम अर्चन आसन पर माने कपड़ों उत्तरीय के आसन पर 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके हजारों गोपियों की अलग अलग ग्रुपों में रखी हुई उस पर बैठे। वैष्णोदेव ने प्रश्न किए, हमने संक्षेप में उसको बतलाया और उसके बाद में ये कह रहे हैं न पा रहे हम इत्यादि। हे प्रियाओं, हमारे सहित तुम्हारा जो संयोग है निर्बद्ध संयुजांग, हमारा मिलन जो है बहुत पवित्र है। संसार में पति और पत्नी भी यदि मिलती है तो पवित्र मिलन होता है? नहीं होता है, पवित्र नहीं होता। कोई न कोई जरूर उसमें यदि कुछ है, पुत्र संतति संतति उत्पन्न के लिए पुत्र उत्पन्न के लिए भी मिलन हो सकता है, और स्वार्थ में तो 99% ये उनका बुरा व्यवहार, बहुत कम है जो कुछ पवित्र। जिसको हमारा समाज पुरोहित अग्नि की साक्षी देकर के विवाह किया जाता है, इसके अतिरिक्त बाकी सब मिलन कोई भी ठीक नहीं। बहुत कम ऐसे खरे उतरने वाले लोग हैं, यहां तक कि विवाहित जीवन में भी पवित्र मिलन नहीं होता। बिना किसी लालसा के उनका मिलन नहीं होता, कोई न कोई जरूर रहेगा, काम की तृप्ति हो या कुछ भी रहे, इन लोगों का ऐसा नहीं है। अर्थात संयोग सर्व निरपेक्ष, कपटता इत्यादि से रहित, दोष से रहित, काम दोष से रहित, लोभ देश से रहित, कोई भी इसमें ये कपटता नहीं है। संपूर्ण रूप से निर्मल प्रेम, निर्मल प्रेम किसको कहते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। और इसको प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव में ले जा करके जब स्वयं संवेद दशा में उपस्थित होता है तब वो निर्मल होता है। ऐसा ये प्रेम स्वसंवेद्य माने
इसको कृष्ण ही अपना समझेंगे या गोपियां ही अनुभव करेंगे, दूसरा कोई सुन करके अनुभव नहीं कर सकता, ऐसा स्वसंवित्त दशा। इसलिए निर्दोष है संपूर्ण, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। इसलिए आजकल आर्य समाज जैसे मूर्ख लोग और दूसरे लोग, दूसरे संप्रदाय के लोग श्रीमती राधिका या गोपियों की महिमा नहीं समझ सकते। और संयोग सम्यक रूप से मद विषयक चित्त की एकाग्रता, मद विषय माने कृष्ण, मेरे विषय कौन, कृष्ण जो नंदनंदन या यशोदा नंदन गोपीजन वल्लभ हैं उनके प्रति है और महाभाव की पराकाष्ठा तक है। अथवा एकाग्र उनके अंदर में है, उसमें मिलन में कोई भी निंदा नहीं है। गोपियों ने भी इसको सिद्ध किया था, जब रासस्थली में जब पहले मिलन हुआ, जब आई कृष्ण ने कहा जी घरों को लौट जाओ, अपने पतियों के पेश में जाओ। उस समय हमने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, क्या उत्तर दिया, ऐसा आज तक हमको गुरु नहीं मिला इतना सुंदर उपदेश दीजिए, कहे जो अपने पतियों की सेवा करो, आप हमारे गुरु हैं, इसलिए पहले गुरु की पूजा कर लें तो पति की पूजा करेंगी। दूसरी बात ये कि संसार में जो पति होता है अपनी स्त्री का पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है, क्यों, मृत्यु से रक्षा कर सकेगा, दुखों से रक्षा कर सकता है, पेट में जब वो थी अपनी मैया के तो पति ने पालन पोषण उसका किया, इसलिए जगत का पति अपने स्त्री का यथार्थ पति नहीं है। पति कौन है, कृष्ण ही पति हैं, परम पति हैं, सर्वस्व हैं, वो सबका पालन पोषण करने वाले हैं। तो आप ही तो हैं, आप तो कह रहे हैं जी मैं भगवान हूं, तब तो ठीक है आप ही हमारे पति हुए। दूसरी बात आपने कहा है जो जैसा हमारा भजन करता है मैं उसका वैसा ही भजन करता हूं, तो हम लोग आपका भजन करने के लिए जिस रूप में है आप उसी रूप में हमारा भजन कीजिए। अंत में कृष्ण हार गए उनसे, गोपियों ने बड़ा सुंदर वो बतलाया है। तो यहां पर भी कह रहे हैं हे प्रियाओं, तुम्हारा हमारे साथ में मिलन संपूर्ण रूप से पवित्र है। इसको कौन समझेंगे, सुखदेव गोस्वामी समझेंगे और कम समझेगा, शंकर जी समझ सकते हैं और भी उच्च कोटि के सनक सनंदन सनातन इत्यादि समझ सकते हैं, साधारण लोग इसको नहीं समझ सकते, इसलिए इनकी आराधना करते हैं। इस संयोग में एतद् द्वारा स्मृति शास्त्र जितने भी हैं जो बतलाए गए हैं इनसे भी अतीत है ये गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम। यहां तक कि श्रीमद् भागवत रत्न में कहा गया है यदि माता पिता इत्यादि का जो ऋण हमारे ऊपर में है, देवताओं का ऋण है और राजा का ऋण है, समाज का ऋण है, पितृ ऋण है, माता पिता भाई सब जितना ऋण है, यदि कोई ऋण ऋणित व्यक्ति भगवान का एकाग्र रूप में मुकुंद के शरण में चला जाता है वो किसी का ऋण नहीं है, सब चुक जाता है, किसी का ऋणी नहीं है। जब तक भजन नहीं करता है तब तक सब का ऋणी है, और जब संपूर्ण रूप से भगवान का भजन करने लगता है तो वो किसी का भी ऋणी नहीं होता। इसलिए इसमें किसी तरह का काम जनित कोई भी बुराई, कोई भी दोष इसमें नहीं है गोपियों के प्रेम में। प्रत्युत निर्वध्य संयोग हेतु ये कृष्ण के प्रति काम, ये महाप्रेम है, इसका श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को भी बतलाया है। इसलिए ये महागुण है। यदि किसी का कृष्ण के प्रति प्रेम हो, घर गृहस्थी में भी किसी स्त्री का भी हो, तो वो पवित्र पर्ण है। किंतु कभी कभी ऐसा होता है, यदि स्त्री कुछ प्रेम में बढ़ गई, भक्ति में, और उसकी निष्ठा हुई और उसके सब दोष दूर होने लगे, जैसे काम क्रोध इत्यादि, और उसके अनर्थ दूर होने लगे और कुछ एकांतिकता बढ़ने लगी, घर के कामों में अब उतना मन नहीं लगता, ऊपर से करती है और भीतर से कृष्ण के भजन के प्रति निष्ठा के बाद में रुचि आने लग गई, पति नहीं सह सकता। धार्मिक व्यक्ति भी है, हरिनाम भी ग्रहण किया, दीक्षा भी लिया है, तो वो नहीं सह सकता, उत्पात खड़ा कर देता है, कहा जब तक जब ऐसा ही भजन करना है तब तो जाओ वृंदावन में चली जाओ। और यदि पति ऐसा करने लगे तो स्त्री नहीं सह सकती, वो क्या कहेगी, यदि ऐसा करने तो आप जाकर के वृंदावन में भजन कीजिए, क्या जरूरत है ये सब की, वो भी नहीं सह सकती, न तो वो अपनी उपेक्षा सह्य कर सकती है न ये अपनी। किंतु हाँ, ब्रजवासी लोग कैसे थे, अपने स्त्रियों का आदर करते थे, किस लिए, कि ये कृष्ण को प्यारी है, ये उनके लिए संभव है। अर्जुन के लिए संभव है, द्रौपदी जी कृष्ण की प्यारी हैं और सब प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए अर्जुन की और पांचों पांडवों की पूजनीय प्यारी हैं, उनके कहने से उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ काम करते हैं। साधारण लोगों के लिए, बद्ध जीवों के लिए ऐसा होना बड़ा भारी कठिन है। यदि बेटा घर में रह करके संपूर्ण रूप से भजन करने लगे, बाप नहीं सह सकता, अजय कमाएगा नहीं, बैठा बैठा भोजन ये करता है, उसको गाली गलौज दे करके घर से निकाल। अभी आप लोग हंस रहे, आप ही लोगों का बेटा ऐसा जाए तो देखिए ये क्या होगा, घर से निकाल देंगे या बेटियों को निकाल देंगे। यहां पर करें, उस संयोग में कामना नहीं है, कोई संसारिक भौतिकता की कामना नहीं है, काम जैसा प्रतीत होने पर भी उनका मिलना, प्रतीत माने क्या, एक बार एक भाई अपने बहन के साथ में कहीं रिक्शे पर जा रहा है, एक वर्ष का अंतर का उनकी आयु है, करीब करीब 18 वर्ष की का भाई और 16 वर्ष की उसकी बहन, दोनों ही बड़े सुंदर हैं, जा रहे हैं, जो देखता है वो क्या देखता है, देखो देखो ये जा रहे हैं सब, ये दोनों बदमाश नंबर एक है, ये नहीं कहेंगे सोचेंगे ये भाई और बहन है। यदि पिता की बड़ी लड़की हो तो आयु थोड़ी सी अंतर होगी, कितना 16-17 वर्ष की ऐसी हो सकती है, और वही बेटी अब बड़ी हो गई है, अपने बाप के साथ में जा रही है, लोग क्या कहेंगे, उधर ही नजर जाएगी लोगों की, पर भाव नहीं आएंगे, क्यों, उनके अंदर में खुद मैल है। इसलिए गोपियों का कृष्ण से मिलन ऐसे संसारी लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं, अपनी बुराइयों का उस पर आरोप करते हैं, कामी कामी जैसा देखता है, सर्वत्र काम में देखा, चोर सबको चोर देखेगा, और विद्वान आदमी सबको क्या देखेगा, सभी विद्वान है, भक्त लोग क्या देखेंगे, सारा विश्व भक्त है, अपने अपने चश्मे के अनुसार में सब लोग देखेंगे। किंतु ऐसा देखने पर भी, जैसे शिशुपाल कृष्ण को गाली दे रहा है, जरासंध चोर और क्या क्या वो सब गाली देते हैं कृष्ण को, तुम्हारा जन्म कर्म का ठीक नहीं, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है इत्यादि। अतएव एक संयोग, कृष्ण के प्रेम परिपाक विलास विशेष है, प्रेम के परिपाक, प्रेम परिपाक माने क्या, जैसे दूध को आग पर रख करके उसे उबाला जाए, उबालते 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 एकदम लाल हो जाए और बड़ा खीर जैसा हो जाएगा, तब ये सार हुआ है, ऐसे प्रेम का ये परिपाक है गोपियों के साथ में उनका मिलन। इसको पूर्व में पहले बतलाया गया है। कब बतलाया गया है? इसमें पहले बतलाया गया जब विरह में क्या गोपियों की अवस्था होती है, विप्रलंब रस किसको कहते हैं, संभोग रस किसको कहते हैं, इसके पहले उन्होंने बतलाया है सनातन गोस्वामी। तो ये तुम्हारा जो असाधारण साधु कृत्य है, क्या साधु कृत्य, ये आगे बतला रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने जैसे माता पिता को छोड़ दिया, हमने अभी माता पिता, हमने तो दो दो रख लिए हैं, पिता और दो माता, वसुदेव देवकी और नंद जैसा, दो दो अभी किसी के साथ में हमारा संबंध नहीं कटा है तुम्हारे प्रीति के लिए, और तुमने क्या किया है, काट दिया। लोक धर्म लज्जा, हमने कुछ भी नहीं प्रत्याग किया और तुमने हमारे लिए सब कुछ प्रत्याग कर दिया। यदि गोपियां कहें जे तुम्हारे लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, संसार में किसी से संबंध नहीं है, केवल मात्र तुमसे ही संबंध है, तो कृष्ण ऐसा संबंध सबसे तोड़ सकते हैं? उनके लाखों भक्त हैं, करोड़ों हैं, अगणित हैं। सत्यभामा रुक्मिणी को छोड़ देंगे या दूसरे अवतारों के जो सीता जी इत्यादि हैं उनको छोड़ सकते हैं? न किसी भक्त को छोड़ेंगे, किसी को छोड़ नहीं सकते, सब में अपना वैसा ही प्रीति रखेंगे। यदि छोड़ेंगे तो क्या होगा, करोड़ों करोड़ों के ऋणी बन जाएंगे, एक के नहीं हो सकते, इसलिए मैं ऐसा नहीं। गोपियों से उन्होंने कहा जी देखो, जो तुम लोग प्रेम करती है तो हमसे कुछ मांगो। तो गोपियों ने मांगा, कहा जैसे हमको कोई जरूरत नहीं, आप प्रसन्न नहीं, कुछ मांगो तो क्या मांगेगी, अपनी सेवा दीजिए। अपनी सेवा क्या, हमारे पैर का को क्या करे, संभालन कीजिए, हमारे पैरों को दबाएं, ये आपकी। तो कृष्ण सुनकर के क्या करेंगे, आनंद में भर जाएंगे, उनके ऋणी हो जाएंगे। इस तरह से जब भी कुछ मांगेंगे अपनी सेवा तो उसे और भी उनके ऋणी बन जाते हैं। कितना बज गया, 7 बज गया, 7 बज गया ना। इस तरह से वो ऋणी ही बने रहेंगे। जो जब भी कृष्ण कहेंगे जो कुछ हमको कुछ मांगो तो कहेंगे जैसे अपनी सेवा दीजिए, अपनी सेवा देने पर और भी रेडी हो जाएंगे। इस तरह से मैं समर्थ नहीं हूं। दूसरी बात इसी को दूसरे शब्द में, तुम लोग एकनिष्ठ और मैं बहुनिष्ठ हूं। मैं कभी भी एकनिष्ठ नहीं, एक गोपी, यदि लाख गोपियां हैं तो यदि श्रीमती राधिका के प्रति निष्ठा उनकी रही और कर्प छोड़ देंगे तो और के ऋणी बन जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते कृष्ण। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मैं इसमें असमर्थ हूं, तुम्हारा ऋण मैं नहीं चुका सकता। आगे के लिए व्याख्या कल हो। ये नन्नूमल जी आए हैं आज, आप अपना ये कीजिए तो।